हैं, एक है भागवत, दूसरा होता है भागवत ही उसका नाम, किंतु होता है वैष्णव जो कीर्तन करते हैं। संसार में कीर्तन ही एक है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अयव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इतने बड़े दयालु हैं जिसकी महिमा इस श्रीमद् भागवत में बतलाई गई है नाम की। एतत् निर्बध्यमानानां इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनाम् निर्णतम् हरे नामान। यदि संसार में कोई चीज की आवश्यकता हो, जिसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं हो, जो ज्ञान और मुक्ति भी चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति भी चाहते हैं, कोई कुछ भी नहीं चाहते हैं, उन सब के लिए भगवान का नाम कीर्तन ही नाम कीर्तन ही नाम कीर्तन ही एकमात्र सुखी करने वाला है। भगवान के नाम संकीर्तन के बिना जगत में कोई सुखी और शांति नहीं हो सकता है, ये एकदम दृढ़ समझो। यदि सुखी क्यों होना है जगत में तो नाम कैसे किया? आप तप करेंगे, तप करने की शक्ति नहीं, 5 दिन निराहार रहिए तो सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज तो 7 दिन नहीं खाया, रहिए तो 1 दिन बिना पानी का बिना हवा का, ध्रुव जी ने क्या किया, कितने 6 महीना ना, 6 महीने में अंतिम महीने में उन्होंने पानी नहीं लिया हवा नहीं लिया, ऐसा तप होगा कलयुग में? संभव नहीं। ध्यान लगाएंगे 500 तरफ का प्रॉब्लम, सारा राष्ट्र आज कल देखिए ना, भारत ने बम बनाया और इधर पाकिस्तान ने बम बनाया, इधर में अमेरिका की नींद हराम हो गई, इधर में इंग्लैंड अमेरिका सब लोग चिंता कर रहे हैं, और वहां के लोग आराम से बैठे हैं ना, वो लोग भी बड़ी समस्या है। कल यदि बम फटाफट फटना आरंभ हो गया तो फिर ध्वंस के कारागार पर सब बैठे हैं, पता नहीं इसका फल क्या होगा, तो इसलिए ध्यान नहीं हो सकता है। अर्चन करेंगे ठाकुर जी का नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद में अर्चन इत्यादि व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसे लोग हो जाएंगे जो ठाकुर जी के घर में, अभी तो इतने आदमी को मैं देख करके बहुत प्रसन्न हो रहा हूं सुनने के लिए आए हैं ठाकुर जी का घर, कुछ दिनों के बाद में ठाकुर का पुजारी भी नहीं रहेगा, अभी पुजारी को आपको पैसा देना होता होगा, पहले पुजारी ऐसे नहीं होते थे, पैसा नहीं लेते थे, हम लोग पैसा नहीं पूजा के लिए लेते हैं अपने मंदिर में जो रखते हैं, किंतु यहां पर पैसा देने पुजारी को पैसा नहीं देने से पूजा नहीं करेगा, नहीं तो भारतवर्ष से ले आ करके उनको खाना पीना खर्चा बर्चा सब देना पड़ेगा, कुछ दिन के बाद में वो उसमें भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो पैसा पहले संभालने अलग, ठाकुर जी को 1 केला दे देंगे, जैसे पिलवान होता है ना हाथी का भारतवर्ष में, पिलवान सब हाथी को खाने का माल सब अपने पॉकेट में रख लेता है और हाथी को कैसे पत्ता तत्ता दे देता है, हाथी बिगड़ करके पिलवान को भी खत्म कर देता है, बड़ा रिवेंज लेने वाला क्रोधी जानवर होता है और समझता है। तो धीरे 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 अर्चन भी समाप्त होगा, इसमें भी पैसे लगते हैं, मंदिर बनाने में पैसा लगा होगा, अभी तो सुनते हैं ये कहीं कहीं 70 करोड़ या कितने रुपए का भी मंदिर का प्लान बन रहा है, कितनी कितनी जगहों में, और फिर उसमें चिड़िया भी झांकने के लिए फिर नहीं जाएंगी, बहुत कम लोग आएंगे, इसलिए जिसमें 1 पैसे का खर्च नहीं है, क्या है ये हरिनाम, घर में बैठे बैठे चलते फिरते उठते बैठते रात में दिन में स्नान करके बिना स्नान किए भोजन करके, अरे सो रहे हैं बेड में तो भी कर, याद तक कि और कोई समय नहीं मिल रहा है तो तटी करते समय भी पैखाना करते हुए भी हरे कृष्ण कर लो, कोई भी बात नहीं, पवित्रता पवित्रता का नियम तियम कुछ भी बात नहीं है, और यदि नियम पूर्वक करे तो साथ ही साथ उसका फल मिलेगा। इसलिए हरिनाम संकीर्तन से जीवों के कल्याण के लिए कलयुग में और कोई साधन नहीं है। बस उन्होंने कहा जे भागवत आरंभ कराओ, और फिर कहां होगा, हरिद्वार में आनंद घाट एक है, हम लोगों का वहां पर आश्रम है, वहीं पर चारों तरफ से देवता लोग भी, दूसरे दूसरे जितने भक्त थे, देवता ऋषि जितने थे, मनुष्य लोग दलों के दलों में 7,000 के 88,000 ऋषि लोग भी वहां पर पहुंच गए, और ये सनत सनंदन सनत कुमार ये चारों भगवत की कथा है कहलाने लगे। नारद जी बैठकर। इतने में भक्ति देवी वहां पर अपने बच्चों के साथ में आई और जब भागवत की महिमा सुना उन्होंने और साथ ही साथ में उनके लड़के तरुण बन गए। परम खुशी हो गई, आज हमारा कल्याण हो। मैं कहां बैठूं? सनातन गोस्वामी उन्होंने सनत कुमारों ने उत्तर दिया, तुम भक्तों के हृदय में बैठो, तुमको कोई देख नहीं सकेगा सही और तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं करेगा, बस भक्तों के हृदय में वो जा करके बैठ गए। भक्त लोग श्रद्धापूर्वक भागवत की कथा सुनने लगे और इस प्रकार से भागवत की कथा चलने लगी। अब जो मैंने प्रणाम श्लोक किया था वो श्लोक क्या, यंग प्रबदम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आयुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयम मुनिमान पुरुष। गुरु जी को प्रणाम करके सूत्र को स्वामी कहने लगे। देखो अच्छा बीच में थोड़ा सा कर्तन का, ये कृष्ण के और श्रीमती राधिका जी के बड़े प्रिय शुक हैं। शुक जो पक्षी होती है, जब कृष्ण की लीला अभी चल रही थी, कृष्ण इस जगत में थे, एक समय में राधा जी श्रीमती राधिका जी जो उनकी शक्ति स्वरूप शक्ति है, मूर्तिमान उनका विग्रह ये राधिका जी हैं, उनकी शक्ति का वो बरसाने में अपने सुख को अपने हाथों में रखकर और अनार का दाना उसे खिला रही है, कभी कभी चावल और दूध लेकर के उसे खिला रही है और कह रही है, बोलो तो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ठीक राधा जी के ही स्वर में, वैसे ही मधुर स्वरूप में जैसे राधा जी की आवाज है, ठीक उसी स्वर में कृष्ण 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 वो भी करने लगा। राधा जी सुनकर के बड़ी प्रसन्न हो रही है, बीच बीच में कहती हैं और वो कहता है, ये सुनकर के प्रसन्न हो गई। इतने में वो सुख पक्षी उनके हाथों से उड़ गया और उड़ करके देखा जिसे बड़े सुंदर तमाल के पेड़ नंदगांव में, वहीं से थोड़ी डेढ़ मील की दूरी पर, दो मील की है, वहां पर पहुंच गया, बल्कि दोनों का बॉर्डर एक में मिलता है, इसलिए इस पार से उस पार में जाना था, बस वहां चला गया एक तमाल वृक्ष पर बैठकर और वो वहीं पर बैठ गया और कृष्णा और मधुमंगल जी वहीं पर वहीं खेल रहे हैं, सुख पक्षी वहीं पर तमाल वृक्ष पर बैठ करके कह रहा है, कृष्णा कृष्णा बहुत मधुर। कृष्ण ने देखा ये इतना मधुर स्वर कहां से आ रहा है, ये राधा जी तो नहीं है, तो बड़ी ध्यान से सुनने लगे। इतने में फिर जब बोला वो कृष्ण कृष्ण, तो देखा रही ये तो बड़ा सुंदर सा सुख है, ये तो हमारा नाम इतना सुंदर बोलता है। उन्होंने उसको थोड़ा सा पुचकार करके बुलाया और वो ठीक आकर के कृष्ण के कंधे पर बैठ गया, कृष्ण ने अपने हाथों में ले लिया। तुम क्या बोल रहे थे जरा बोलो तो, कृष्णा कृष्णा कृष्ण। थोड़ी देर के बाद में उसने एक श्लोक बोला, वो श्लोक क्या है, मैं पक्षी जाति का चंचल स्वभाव का, मैं श्रीमती जी के हाथों पर बैठ करके बड़े आराम से अनार का दाना चूंग रहा था और मैं इस दोष के कारण ये मैं बहुत चंचल हूं, उनके हाथों से उड़ गया और यहां पर आ गया, मुझे धिक्कार है मुझे धिक्कार है मुझे धिक्कार है, ऐसी करुण स्वर से वो बोला जैसे कृष्ण का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने बड़ी हाथ लेकर के और मधुमंगल से अनार का दाना या उसके खाने के लिए कुछ मंगाया, उसको दे करके अपने पास में रखा। इतने में दो छोटी छोटी किशोरी गोपियां वहां पर उपस्थित हुई, अरे ये तो हमारी प्यारी जी का सुख है, इसे दे दो नहीं तो वो तो जीवित नहीं रह सकती इसके बिना। यदि तो उनका सुख है तो तुम उन्हें बुला लो, मैं नहीं देता, तुम बुला लो, तुम्हारे पास में चला जा ले जाओ। तो इस जगत में पशु पक्षी प्राणी या कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो आपके पास आकर के फिर लौट जाए ऐसे। बस एक ही व्यक्ति है जो इसको लौटा सकता है, हम लोग नहीं। आप कृपा करके इसके स्वयं दे दीजिए कि मैं नहीं देता, तुम बुला लो और चला जाए तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं दिया कृष्ण ने, कृष्ण उन लोगों के पास में नहीं गया, यशोदा मैया के पास में गई। यशोदा मैया से रोने लगी, ये हमारी प्यारी जी का सुख है, इनसे दिलवा दीजिए, ये ऐसे नहीं देना। अच्छा ठाक जाओ, तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं आती हूँ। ये कह करके जहाँ कृष्ण और वो मधुमंगल जी उस सुख से क्रीड़ा कर रहे थे वहां पर पहुंच गई और झपट्टा मार करके उसे पकड़ लिया। सब समय बच्चों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में, जानवरों के साथ में खेलता है। चलो अभी घर में स्नान कराएंगे। ये पकड़ करके सुख एक हाथ में ले लिया, उसको पकड़ लिया और कहा दासियों को जैसे स्नान स्नान कराओ, और उनको वो पक्षी दे दिया लेकर। कृष्ण भगवान होने पर भी यशोदा मैया इतना लाड प्यार करती हैं, उन्हें शासन करती हैं, कभी कान पकड़ लेती हैं, कभी कुछ करती हैं, और कृष्ण रोने लगते हैं, इतना उनका प्रेम है। अब यही सुख इतना प्यारा है इन दोनों का, कृष्ण के लीला चक्र को सबको जानने वाला है, सब लीलाओं को दर्शन करने वाला है। जब कृष्ण की लीला यहां से जगत से अंतर ध्यान हो गई, गोलोक वृंदावन में चली गई, तो कृष्ण का राधा जी का आदेश हुआ कि तुम इस जगत में रह करके यहीं पर प्रचार करना, हम लोग जा रहे हैं, ये जगत को सब तुम्हारे ऊपर में छोड़ रहे हैं, इसलिए भक्ति का प्रचार होना चाहिए, तुम्हारे द्वारा जगत का कल्याण होगा, इसलिए तुम रहो। वो सुख बहुत दुखी हो गया, ये लोग तो चले गए, अब चारों तरफ में घूम करके देख रहा है कि कहां भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, कहां भगवान की भक्ति की कथा हो रही। पहुंचते पहुंचते कैलाश में पहुंचा, वहां शंकर जी पार्वती जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं, यही भागवत। अब बड़े प्रेम से सुनने लगा। पहले अध्याय में जब आरंभ हुई कुछ तत्व की बातें आई, द्वितीय अध्याय में और सृष्टि चक्र इत्यादि का वर्णन होने लग गया, तो स्त्री का मस्तिष्क कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, बस सो गई। पहले तो हूं कर रही थी किंतु सो गई। जब तत्व की बातें आती हैं तो आदमी सो जाते हैं, जब कुछ कहानी जैसी आती है तो लोग उसमें, आप लोग सब समय बड़े शांति के साथ में ठीक से ऐसे ऐसे मत बूढ़े जैसे मत बैठेंगे, शांति के साथ में हम करके बैठेंगे। इसका एक एक कण अमृत है, यदि इन कथाओं में से एक भी कथा आपके कान में जाए और युक्ति तर्क की कसौटी पर आप कसेंगे, जहां पर संदेह होगा हमसे पूछ लेंगे। हम लोग वो ब्राह्मण जैसे भागवत सुनाते हैं वो हम लोग वैसे नहीं, हम लोग उसके तत्व को देने आए हैं, एक पैसे की भी लालसा नहीं है जो आप लोग चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे, हम जो देने के लिए आए हैं इस चीज को ग्रहण करेंगे। बहुत दूर से आया हूं, पैसे के लिए नहीं, हम पैसा एकदम नहीं, आप लोगों का हृदय चाहता हूं निर्मल। इन कथाओं में से थोड़ा सा भी बैठ गए आपके हृदय में, आपका जीवन परम धन्य हो जाएगा। यदि आप लोग हमसे लेंगे आपका जीवन सुखी हो, आप लोगों के पास में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको दे सके, उसको तो हम पहले हम लोग छोड़ करके आए हैं, इस चीज को समझेंगे। इसलिए जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को सुनाया और वहां पर इतने लाखों आदमी थे, एक पैसा लिया न क्या किया, जैसे नंगे आए थे सबको सुना करके भागवत की कथा दे करके चले गए, ऐसे ही समझेंगे, कुछ लेने की चेष्टा करेंगे। तो वहां पर पार्वती जी तो सो गई और ये सुख पक्षी पेड़ की डाल से करे हूं आगे कहिए, बहुत सुंदर ऐसे जैसे पार्वती जी कह रही थी उन्हीं के स्वर में स्वर मिला करके कहने लगे। शंकर जी सोच रहे हैं कि ये बड़ी कथा बड़ी प्रेम के साथ में पार्वती जी सुन रही हैं, कथा में वो रंगे हुए थे, कभी आंख बंद कर देते, कभी कुछ, इसलिए वो देख नहीं सके ये कौन हूं हूं कर रहा। थोड़ी देर के बाद में जब एकादश स्कंद जब पहुंच गया, वो समाप्त होने की कथा आई, फिर ज्ञान तत्व आया, तो पार्वती जी उठ गई, बोली जी हमने तो कुछ सुना नहीं, मैंने तो वही सुना था पहले सृष्टि तत्व, इसके बाद में क्या हुआ, तो कौन सुना। अरे भागवत की कथा ऐसी है जो सुन करके आदमी अजर अमर हो जाता है, इससे व्याधिक उसको प्रेम हो जाता है, और तुमने सुना नहीं, तो कोई अयोग्य व्यक्ति इसको सुन लिया, कौन सुना, कौन हुंकारी भर रहा था। चारों तरफ देखने लगे, देखते देखते देखा पेड़ों की आग पे डाली पर बैठा हुआ, पत्तों से छिपा हुआ, केवल मुख उसका लाल दिखाई दे रहा है, ठोट, अरे यही तो है, त्रिशूल लिया और उसके पीछे दौड़े। अनाधिकारी व्यक्ति को भागवत और गीता नहीं सुनना चाहिए, जो इंद्रियों का संयम नहीं है, जिन लोगों को झूठ बोलते हैं, ने? पैसे के प्रति अत्यंत आसक्त हैं, विषयी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, व्यभिचारी हैं, उनको गीता मत सुनाओ, खबरदार भागवत मत सुनाओ। जो कि प्रेम के लिए सुनना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, किस लिए जगत में आया, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, हम कैसे सुखी हो, ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति को, तपस्वी व्यक्ति को, निर्लोभ व्यक्ति को भागवत और गीता को सुनाओ, नहीं तो वो पालन नहीं करेगा, दो दिन के बाद में छोड़ देगा। इसलिए ये कैसे सुन लिया ये सुपक्षी, बस मारने के लिए दौड़े, और उस समय कैलाश पर्वत से बद्री नारायण केवल 4-5 मील का अंतर है, किंतु पहाड़ की चोटियां इतनी ऊंची हैं जो उनको कम से कम तो 300 माइल घूम करके जाना पड़ेगा। पक्षी तो उड़ करके चला गया झट, और शंकर जी भी वैसे ही उसके पीछे पीछे चले। जब उस आश्रम में पहुंचे तो व्यास जी का आश्रम, वहां पर भागवत की कथा व्यास जी अपनी पत्नी कुछ को कह रहे हैं, वही निगम कल्प तरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिवत भागवत मरसमालयम मुहुरहो रसिका। भागवत की कथा कौन सुनेगा, वेदों का ये सार है, क्या भागवत कैसा सार, गीता को बतलाया ना, गीता क्या चीज है, सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो सुदूर भक्ता भक्ता गीता मितो महत्। ये दुग्ध है उपनिषद, सारे उपनिषद, और बछड़ा कौन है, पार्थ, और धोने वाला कौन है, कृष्ण स्वयं है, और अमृत क्या है, वही दूध जो दूह रहे हैं, अमृत गीता के जो कथामृत में ये अमृत है, तो सर्व उपनिषद का। और भागवत क्या है, उपनिषद वेद का एक अंग है केवल, बहुत में बहुत विशाल है, और श्रीमद् भागवत है समस्त वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उसका एक अंग उपनिषद, उसका एक सार अंश गीता, और यह है वेदों समस्त वेद रूपी कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, जो मांगो सो ही दे दे, क्या दे, एक उपमा के लिए बतलाता हूं, कोई जंगल में कोई एक शिकार खेलने के लिए व्यक्ति गया, शाम हो गई, भूख लगी, एक पेड़ के नीचे गया, बहुत थका हुआ प्यासा, जरा पानी कहीं से मिल जाता, इतने में देखा जैसे कोई पानी लेकर के उपस्थित हुआ, पानी पी लिया, भाई जरा कहीं भूख मिल जाती, कुछ खाने के लिए कुछ मालपुए और ये सब मिल जाते, राबड़ी मलाई, इतने देखा जो रसगुल्ला मलाई सब जो कुछ है सब आ गया थाली में, वाह खा लिया, एक पलंग सुंदर होता तो मैं सो जाता, घोड़े को ही पर बांध दिया, देखा जो सचमुच में एक पलंग आ गया, थोड़े देर में कहा जब सो गया, आध घंटे के बाद में उसकी नींद खुली, अरे ये तो बाघ गर्जन कर रहा है, कहीं आ ना जाए, इतने में बाघ आ गया, अरे कहीं हमको खा ना जाए, इतने में हड़प करके उसे खा गया। ये तो कल्प वृक्ष जगत का है, और श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष कैसे हैं, विषय मांगने पर भी अमृत देने वाले हैं, ऐसे ये भगवत समस्त वेदों का सार क्या है, जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ में सर्वत्र रस है, किंतु उसकी जड़ को चूसो तो उसमें से मिठापन आएगा कि नहीं आएगा? उसमें भी रस है। अच्छा, वही रस डालियों में गया, पत्तों में गया, पत्तों को चूसिए तो नहीं आएगा, फिर उससे फल बना। कच्चा है तो उसको चूसो तो मिठापन नहीं आएगा। जब वही फल पक गया और उसकी सुगंध से कोयल और सूख पक्षी आकर के उस पर बैठ करके थोड़ा सा ठुकराया, झट गिर गया, है ना, बहुत मीठा। उस आम में जो मिठास है पके हुए, वो उसकी जड़ में नहीं है। तो ये वेद रूपी जितने वृक्ष है ये सब 1008 उसके उपनिषद इत्यादि हैं। उसमें कर्म कांड है, उसमें ज्ञान कांड है, उसमें यज्ञ करने की ये सब बातें हैं, होता हवन इत्यादि बहुत सी बातें हैं। तो इसमें रस तो है, किंतु वेदों में वो रस नहीं है। वेद का एकदम पका हुआ फल जो है मीठा, सुख ने स्पर्श कर दिया है, वो मीठा फल क्या है? ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए वेद में वो फल नहीं, रस नहीं है जो श्रीमद् भागवत में है। यही सब कथा कह रहे थे इतने में। इसलिए हे भाऊ, हे रसिक, यदि नित्य काल के लिए सुख चाहते हैं तो भागवत का आस्वादन कीजिए। मऊ रहो रसिका भोल भाव का। सुनते सुनते इतने में वो सुख आया, देखा जे इनकी पत्नी मुख को ऐसे किए हुए बड़े आश्चर्य से सुन रही थी भागवत की कथा, इतनी सुंदर। और इतने में सुख पक्षी उनके मुख में घुस गया। कौन? वही राधा और कृष्ण वाला सुख घुस गया। और कितने दिन तक नहीं निकला? कोई कहते हैं 12 वर्ष, कोई कहते हैं 16 वर्ष तक नहीं निकला उनके पेट में रह करके। और वही सब कथाएं, भागवत की कथाएं सुन रहा था। जब 16 वर्ष का हो गया, सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यास जी बोले, अरे भाई कौन हो आप? कोई भी हो, अपनी मैया को कष्ट मत दो, जरा निकलता हो। उन्होंने भीतर से आवाज दिया, मैं इस कलयुग में नहीं निकलूंगा, माया में नहीं आऊंगा। माया माने क्या? माया, जो मां माने नहीं, जो नहीं है। अतः मैं शरीर नहीं है उसको मैं समझ लेना, ये संसार अपना नहीं है उसको अपना समझ करके उसमें आसक्त होना, इसी का नाम, आसक्ति का नाम माया। और भगवान की एक शक्ति का नाम है माया, जो कि इन सब की सृष्टि करते हैं, जीव के स्वरूप को ढक करके ऐसा कराती है। किसको? जो जीव भगवान को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? भगवान ने उसको इसके लिए स्वतंत्रता दी रखी है, इसलिए भूल जाता है। इसलिए जो जीव भगवान का स्मरण करता है, फिर अपनी असल अवस्था में पहुंच करके ऐसे स्थान में पहुंच जाता है, जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वहां से फिर नहीं लौटना होता। इसलिए जीव वहां से नहीं आया है, नहीं तो वहां से गिरेगा कैसे? कभी नहीं, यह बात गलत है, जो वहां से जीव लौट करके आया। हाँ, कृष्ण और उनके प्यारे जीव जगत का उद्धार करने के लिए कुछ समय के लिए आते हैं, ये अलग बात है। किंतु वहां से किसी का पतन हुआ आज तक ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ये जीव वहां से जब गिर जाएगा, इतनी भजन करने के बाद में, लाखों वर्षों के बाद में जो जीव जिस गति को पाता है, वहां से फिर गिर कैसे जाएगा? यह संभव पर नहीं, यह स्वर्ग नहीं है, है ना? इसलिए वहां से आने का कोई प्रश्न नहीं। बल्कि वहां से रसिक, भावुक, तत्त्वज्ञ व्यक्ति, मुक्त लोग, नारद जी जैसे लोग, ये सब आते हैं, जगत का कल्याण करके चले जाते हैं। इसलिए यही धारणा हो जीव वहां से आया है, ये गलत है। किंतु उसमें पोटेंसी है, किस चीज की? उसके स्वरूप में किस चीज की पोटेंसी? भक्ति की पोटेंसी, प्रेम की पोटेंसी है। उसका बड़ा सुंदर एक रूप है, नहीं तो इसमें आबद्ध कैसे होगा? पंजरे में सुख बंद है तो सुख का कोई रूप ही नहीं है, हवा है तो उस पंजरे में बंद कैसे होगा? इसलिए यह बात गलत है। इसलिए सुख उसके, सुख ने कहा कि मैं माया में नहीं आऊंगा, अर्थात आसक्ति में नहीं आऊंगा, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में गिरना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अच्छा मैं माया हटा देता हूं। उन्होंने कहा, जी आप पर विश्वास नहीं, आप कौन है? व्यास मैं हूं। कृष्ण जब ही स्वयं आकर के कहें कौन कृष्ण, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। राम निसिंह इत्यादि ये भी भगवत तत्व हैं। एक ही चांद के बहुत सी कलाएं जैसे हैं, अलग अलग नहीं है, किंतु कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इनको कभी कभी ब्रह्म भी, परमात्मा भी, भगवान भी कहते हैं। तत्विदस्तम यदि ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। किंतु भक्ति वासुदेवे, भगवान कौन, स्वयं कृष्ण। इसलिए ब्रह्म और परमात्मा इनके अंश और कला हैं, इनके अंग की प्रभा को ब्रह्म कहते हैं, अंग की ज्योति को जो निराकार दिखती है और जिसमें अंगुष्ठ परिमाण यहाँ पर आकार हमारे साक्षी हैं, हमारे कर्मों के नियंता हैं, ये क्षीरोदशायी विष्णु परमात्मा है। और इनके भी मूल कौन है, ये भगवान। उन भगवानों में भी सभी अवतार हैं, एक है, किंतु कृष्णस्तु भगवान। वो कृष्ण जब ही आकर के कह दें तो मैं मान जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। इसमें व्यास जी ने भगवान को पुकारा, कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए। अरे बच्चे तुम कौन हो, जल्दी से निकल के नहीं रहा, मैं माया में नहीं आऊंगा। आप कौन बोल रहे हैं, मैं स्वयं कृष्ण हूँ। ओ आपके लिए प्रणाम है, आप जगत गुरु हैं, कहिए क्या आदेश है। तो अपनी मैया के पेट से निकल आओ, बरसात ही साथ में। उन्होंने कहा एक तलवार के ऊपर में सरसों गिराने से जितनी देर तक ठहरता है उतनी देर के लिए माया को हटा रहा हूँ, उतने देर में जल्दी से निकलो। और साथ ही साथ में 16 वर्ष के बच्चे जैसे निकले। माता जी से और पुत्र का जो संपर्क होता है, कोई जाल जैसा कुछ रहता है, वो लगा रहा, उसको ले करके ही भगे। नाल जिसको कहते हैं, नाल को लेकर के भगे। उनका कोई अभिषेक नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने उनको पवित्र नहीं किया और ऐसी स्थिति में वो भगे। पीछे से व्यास जी जा रहे हैं, पुत्र पुत्र और प्रतिध्वनि हो रही है, क्या कौन किसका पुत्र, ये तो मोह है, कौन किसका पिता, कौन किसका पति, कौन किसका पति, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, ये सब मोह एव ही कारणम। एकमात्र पिता भगवान है और हम उनको भूल करके इस जगत में आकर के नए नए सब संबंध लगा रहे हैं और उसमें आसक्त हो रहे हैं। यदि किसी कारण से यदि भगवान की भक्तों की यदि संग हुआ, फिर अपने स्वरूप को जान करके हम नित्य सुखी हो सकते हैं, उनको पा करके। थोड़ी देर के जाने के बाद में एक सुंदर सरोवर आया, सुंदर सरोवर, सरोवर बहुत पानी निर्मल, कमल के फूल खिल रहे हैं और उसमें कुछ देवांगनाएं अश्वराएं स्नान कर रही हैं, नंगी स्नान कर रही हैं। वहां पर कोई आदमी जा नहीं सकता तो वो स्नान कर रही हैं। आगे आगे सुखदेव गोस्वामी जी चले जा रहे हैं और पीछे पीछे बूढ़े जा रहे हैं, व्यास जी एकदम बूढ़े, दाढ़ी पकी हुई, सब केश पके हुए हैं, जा रहे हैं। इन स्त्रियों ने, रमणियों ने इनको देख करके, सुखदेव को देख करके तो उनको कोई लज्जा इत्यादि नहीं, किंतु जब व्यास जी को देखा, झट सरोवर से निकल करके पड़े कपड़े पहन करके और हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। व्यास जी ने पूछा, मेरी पुत्रियों के पुत्रियों के पुत्रियों, माने हमारा यदि लड़का का लड़का का लड़का का लड़की जैसे तुम हो, और हमारे लिए तो तुम लोग कपड़े, तुमको लज्जा आई और कपड़े पहन करके यहाँ आ गई, और हमारा बेटा 16 वर्ष का जा रहा है और उसे तुम लोगों को लज्जा नहीं, वो भी नंगा जा रहा था। तो उन लोगों ने उत्तर दिया, आपके लड़के ने तो पूछा नहीं हमसे, आप पूछ रहे हैं, वो तो हमको एक वृक्ष समझ करके या लकड़ी सूखी हुई पहुंच करके एक पत्थर का टुकड़ा समझ करके वो तो चला गया, हमारे तरफ में दृष्टि भी नहीं दिया, आप पूछ क्यों रहे हैं, आप तो बूढ़े हैं, आपको स्त्री पुरुष का भेद शायद है। उसको तो स्त्री पुरुष का भेद भी है। ऐसे ज्ञानी थोड़े दिन के बाद में व्यास जी तो लौट आए। इसके बाद में कुछ बहेलिए जा रहे थे जंगल में, सुखदेव व्यास जी ने सोचा जी हमारे पुत्र को ये लाए तो उसको जो भागवत की रचना हमने की है मैं सुनाऊंगा, जगत में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो इसको सुने। ऐसा वैराग्यवान ज्ञानी लोग तपस्वी लोग जन्म से ही मुक्त है, इसलिए बहेलियों को एक मंत्र सिखलाया जी जाकर के इसी का कीर्तन करना, आपके जाल में बहुत से पक्षी जिसको चाहेगा वही आ जाएगा और बाहर सुखी तुम हो जाएगा। उन्होंने उनको कागज पर लिख करके या ऐसे ही उस समय बड़ी स्मृति होती थी सुना दिया और सुनाया श्लोक श्रीमद् भागवत का, कृष्ण का, कृष्ण के सौंदर्य की महिमा, उनका रूप। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्ण चारम बृभद भाषा कनक कपिशम भय जयंती जमालम रंध्राण वेणु रदर सुधया पूरयन गोप बिंदे वृंदारण्यम शबद रमणम प्राविशत। रूप का वर्णन क्या है श्रीमद् भागवत का, ये ऐसा सुंदर रूप है जिसको सुन करके वो पक्षी सुखदेव गोस्वामी भी एकदम आ गए, सभी बहुत से जाल में पक्षी पड़े और ये सुखदेव गोस्वामी जो थे 16 वर्ष के, भाई ये कहां से श्लोक तुमने सुना, किसने सुनाया, तो हमारे गुरु जी ने जाकर के पूछना जिनका इतना सुंदर रूप है कैसा। बरहा पीड़म